ಶ್ರೋಮಣಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಪರಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹೇ ಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮಹಿಮೆಯ ಹಮ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹದೇವ್ ಕೆ ಸಮಕ್ಷ ಉನ್ಕಾ ದರ್ಶನ ಕರ ರಹೇ ಹೈ ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲಾ ಕೆ ಶ್ರವಣ ಕೆ ಲಿಯೆ ಏಕತ್ರಿತ ಹುಏ ಹೈ ये अत्यंत ही पवित्र स्थान है जहाँ पर भगवान और भक्त एक साथ विराज हैं। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ नरोत्तम, मतलब जहाँ पर भक्त और भगवान एक साथ होते हैं। हम देखते हैं ना, यहाँ पर शिव जी हैं,
प्रह्लाद महाराज हैं,
हरे कृष्ण, शिव जी और प्रह्लाद महाराज ये दोनों महाजन हैं और शुद्ध वैष्णव वैष्णवानंद यथा शंभु उन दोनों के साथ में साक्षात त्रिलोकी के नाथ समस्त विघ्नों के हर्ता नरसिंहदेव भगवान विराजमान है। यहाँ पर आकर कंप्लीट प्रोटेक्शन पाए आस्वादन होते हैं कि हम कितने सुरक्षित हैं कि आप भगवान हमारे साथ हैं। इससे बड़ी कृपा भगवान की कोई नहीं हो सकती। हम भगवान से निवेदन करेंगे, याचना करेंगे नरसिंह ध्वज पढ़कर कि हमारे जीवन में भक्ति के अंदर आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करें, समस्त कष्टों को, समस्त रोगों को, समस्त प्राणियों के हृदय में जो रोग है उनको समाप्त करके अपनी ओर आकर्षित करें। इसी भाव से हम नरसिंह महाराज का पाठ करेंगे। आसन सुना दीजिए। ओम असत श्री प्रह्लाद कृतम श्री नृसिंहाकवचम नृसिंहाकवचम वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसंपत्करं स्वर्गमोक्ष प्रदायकम् ध्यात्वा नृसिंहम् देवीशम् हेमसिंहासनस्थितम् विवृतास्यन्ति नयनम् शरदिन्दुस्समप्रभम् लक्ष्म्यालिङ्गितवामङ्गम् विभूतिर्विरूपाश्रितम् चतुर्भुजम् कोमलाङ्गम् स्वर्णकुण्डलशोभितम् श्रियाशुशोभितोरस्कम् रत्नकेयूरमुद्रितम् तप्तकाञ्चन शङ्काशम् पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमालिन्सत् पुणन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वम् शङ्खचक्रालिहेतिभिः गरुत्मता च विनयात् सूयमानम् मुदान्वितम् स्ववृत्कमलसंवासम् कृत्वा दूकवशम् पठेत् न सिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भव सर्वगोपी सम्भवासः फालम् मे रक्षतो ध्वनिम् न सिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनम् स्मृतिम् मे पातु नरहरि मुनिवर्यस्तुति प्रिय नासाम् मे सिंहनासस्तु मुखम् लक्ष्मीमुखप्रिय सर्वविद्यादिपः पातु नृसिंहोरसनामः वक्त्रम् पातेन्दुवदनम् सदा प्रह्लादवन्दितः नृसिंहा पातु मे कण्ठम् स्कन्दौ भूभरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजौ नृसिंहा पातु मे भुजौ करौ मे देव वरदौ नृसिंहा पातु सर्वतः हृदयम् योगिसाधस्य निवासम् पातु मे हरि मद्यम् पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षीविदारिणम् नाभिम् मे पातु नरहरि स्वनावी ब्रह्म संस्थितः ब्रह्माण्डकोटयम् कट्याम् यस्यासौ पातु मे कटिम् गुह्याम् मे पातु गुह्यानाम् मन्त्राणाम् गुह्यरूपदे ऊरुमनोभवम् पातु जानुनी नररूपदे जङ्गे पातु धराभार हर्तायोऽसौ नृकेसरि सुरराजप्रदम् पातु पादौ मे निरहरीश्वर सहस्रशीर्षा पुरुष पातु मे सर्वशस्तनुम्
महोग्रह पूर्वतः पातु महावीरारजोनितः महाविष्णु दक्षिणेतु महाज्वालस्तु नरितो पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुख नृसिंहा पातु वायव्यां सौम्यां भीषण विग्रह ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमंगलदायक संसार बलं पातु मृत्युर्मृत्युर्केसरी इदं नृसिंहा कवचं प्रह्लाद मुखमंडितं भक्तिमान् यः पठे नित्यं सर्व पापय प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यम यम कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं विशिकोरग सम्भूत विशापहरणं परम् ब्रह्मराक्षस यक्षाणां दूरोत्सारण कारणं भूजेवातालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन ये चक्षुस्कुक्षि सम्भवम् करमूले धृतं येन सिद्धेयु कर्म सिद्ध्यया देवासुरमनुष्येषु संसमेव जयं लभे एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेनियतो नर सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति दातिं सहस्रहस्राणि पठेष्वितात्मनिर्भिः कवचस्यास मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्मामि मन्त्रणम् तिलकं विवृतायस्तु तस्य गृहभयं हरे त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वायामि मन्त्र च प्राशयेद्यं नरं मन्त्रं नृसिंहाध्यानमाचरे तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षि सम्भवम् किमत्र भुनोक्तेन नृसिंहा सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यस्तु सतच्चाप्नोति संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हटन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिविभुविदितिजं क्षेपवन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सदतं संहरन्तं भरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकृषत दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादोक्तं श्रीनरसिंहकवचं सम्पूर्णम् सर्वविघ्नविनाशक नृसिंहदेव भगवान् की भक्तवत्सल नृसिंहदेव भगवान् की भक्तश्रोमणि प्रह्लाद महाराज की।
भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले हृदय में जो मानसिक बातें चल रही हैं बुद्धि में जो मौलिक विचार चल रहे हैं उन सबका परित्याग करते हुए प्रेम के साथ मंगलाचरण करते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम जो कुछ भी श्रवण करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके जो कि है राधिकाय तलालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः आराध्यो भगवान् व्रजेशतनाय वनम् रम्या
श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेमम् पुमर्थो माम् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तद्ध्यानरो नष्टभ्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युक्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवी गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ग्रंथा श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन कार्तिक मास की श्याम नामदेव भगवान की ओम को बिना तो पेपर दिए थे तो मैंने दिए दिए सर स्टूडेंट को लक्ष्य हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 जैसा कि आप सब जानते हैं कि अत्यंत ही परम पावन महीना जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है जिसका नाम है दामोदर मास। तो इस दामोदर मास में हमको रोजाना क्या करना होता है? दीपदान करना होता है। और दीपदान के समय क्या करना होता है? दामोदर अष्टकम को पढ़ना होता है। तो हम पढ़ते तो रोज हैं, लेकिन हम में से कई भक्त ऐसे हैं जिनको इसके मिशन पता नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें क्या भगवान को बोल रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो उस दामोदर अष्टकम की व्याख्या करेंगे हम यहाँ पर, और पूरे भाव के साथ आज हम देखेंगे कि हम रोज भगवान को क्या बोल रहे हैं, आखिर इसमें भगवान की कौन सी लीला है। तो इस दामोदर अष्टकम को डिकोड करने का प्रयास करेंगे कि इसमें भगवान के लिए एक भक्त क्या प्रार्थना कर रहा है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। तो सारे भक्त जिनके पास पेपर है, जब हम श्लोक पढ़ेंगे तो आप मेरे साथ श्लोक पढ़िएगा, और जब मैं उसको डिस्क्राइब करूंगी तो भी आप देखिएगा कि कौन कौन से शब्द का कौन कौन सा मतलब। कृपया सब आराम से बैठ जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ठीक है। सबको मिल गया देखो सब शुरू। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुलेन्द्रजमानम् यशोदाभियोदुःखराधममानम् परामिष्टमतियन्तरोदृत्यगोप्या। तो इसमें सबसे पहला पहला शब्द है नमाम। नमाम क्या है कि भक्त जो है वो भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान नमाम से कहकर भगवान को नमस्कार करता है, मंगलाचरण करता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो शिक्षा, ये जो दामोदर अष्टकम है वो पद्म पुराण में एक प्रार्थना लिखी हुई है, पद्म पुराण से लिया गया है, ये पुराण का लिया हुआ है। और पद्म पुराण में जो सत्यव्रत मुनि है वो इस दामोदर अष्टकम को लिखते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पद्म पुराण में इस दामोदर अष्टकम को लिखने से पहले, जब तक सत्यव्रत मुनि ने ये लिखा नहीं था उससे पहले ये नहीं था। ये दामोदर अष्टकम उसी तरह से शाश्वत है जिस तरह से भगवान शाश्वत है, क्योंकि भगवान जैसे शाश्वत होते हैं। भगवान कहते हैं अजो नित्य शाश्वत यम पुरा, मैं अजन्मा हूँ, शाश्वत हूँ, नित्य हूँ, इटरनल हूँ, सदा रहने वाला हूँ। तो भगवान से रिलेटेड जो भगवान की प्रार्थना में शुद्ध भक्त करते हैं ना वो भी शाश्वत होती है, और ये शाश्वत है। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि यदि कोई कार्तिक मास में दीपदान करते समय ये दामोदर अष्टकम को पाठ करता है तो भगवान का प्रिय बन जाता है। कितना सरल है, इस संसार में मनुष्य का प्रिय बनने के लिए हम कितने कपड़ बेलने पड़ते हैं, किसी को खुश करने के लिए कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे अपना समझे, या कोई मुझसे मेरा, मैं किसी का प्रिय बन जाऊं, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। और भगवान का प्रिय बनने के लिए कुछ नहीं, बस दामोदर अष्टकम को गाओ और दीपदान करो। और यहाँ तक के लिए पद्म पुराण में एक बहुत ही सुंदर कथा आती है कि सत्यभामा जी, अभी भगवान की कितनी रानियां हैं, 16,108, उनमें से जो 8 रानियां हैं ना उनको पटरानियां कहते हैं, वो भगवान की सबसे सर्वश्रेष्ठ 8 रानियां हैं। और उनमें भी सत्यभामा बहुत लाडली रानी है भगवान, मतलब लाडली मतलब वो जिद करके, रुक्मणी जी जिद नहीं करती, वो भगवान की बात को सुन के वो बहुत मैच्योर है, लेकिन है ना सत्यभामा जिद करके बोले मुझे ये चीज चाहिए। एक बार क्या हुआ कि कृष्ण ने ना एक पारिजात, वो इंद्र के पास गए थे और एक वहां पर एक वृक्ष है जहां पर पारिजात फूल है, पारिजात का एक फूल उठा है और घर आए, रुक्मणी जी आई फौरन से दरवाजा खोला उनको, तो उनके हाथ में था, रुक्मणी जी को दिया, लो रुक्मणी आपके लिए पारिजात का फूल लेके आओ। भगवान देखो, अरे इसको पारिजात का फूल दिया, ये तो है ना स्वर्ग का, स्वर्ग में ये वृक्ष होता है और मुझे नहीं दिया, मतलब ये मुझसे ज्यादा उससे प्रेम करते हैं। अभी तो है ना जिद करने लगे, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आपने उसको फूल दिया मुझे फूल नहीं दिया। तो कृष्ण बोला ऐसी कोई बात नहीं है, प्रेम तो मैं सबके साथ एक जैसा करता हूँ, अब वो सामने आई एक फूल दे दिया, एक फूल तो क्या फर्क पड़ता है उसको दे दिया, आपको दे दूंगा। तो बोला नहीं नहीं मुझे फूल नहीं चाहिए अभी। बोले क्या चाहिए, बोला पूरा वृक्ष जो स्वर्ग में ना वो पूरा वृक्ष लेके आना पड़ेगा मेरे लिए, तभी तो पता चलेगा, अगर फूल दिया तो मतलब इक्वल प्रेम हुआ ना, मुझे ये बताना सबको कि हम उनसे ज्यादा प्यार करते हो। कृष्ण ने बोला अच्छा ठीक है तुम्हारे लिए वृक्ष लेके आऊंगा, साथ में खाओ। तो मतलब वो कृष्ण की बहुत लाडली रानी थी। एक बार कृष्ण से पूछा कि हे केशव, यहाँ संसार में भी अगर किसी स्त्री को, किसी कन्या को एक अच्छा वर चाहिए होता है तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको 16 शुक्रवार सोमवार रखने पड़ते हैं, शिव जी को दूध की लोटी डालनी पड़ती है, और ना जाने क्या क्या करना पड़ता है, बहुत प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर उसको अच्छा वर मिलता है। और मैं तो कितनी भाग्यवान हूँ कि साक्षात त्रिलोकी के नाथ जो संपूर्ण सुंदरता जिसके अंदर है, अधरम मधुरम नयनम मधुरम, भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान कितने शक्तिशाली हैं, भगवान के पास वो हर वो वस्तु, एक जीव के अंदर जिस जिस वस्तु की इच्छा होती है कि मेरे जो पति हों के अंदर ये गुण हो, वो परिपूर्ण मात्रा में तो कृष्ण के अंदर ही है, षडेश्वर्य के मालिक हैं, सबसे ज्यादा सुंदर हैं, सबसे ज्यादा बलवान हैं, सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं, सबसे ज्यादा यश है उनके पास, सबसे ज्यादा वैराग्य है, सबसे ज्यादा फेमस है, तो उनकी पत्नी बनने के लिए तो मैंने कितना क्या किया होगा? कृष्ण से पूछा, मैंने ऐसा क्या किया कि आप मुझे पति रूप में मिले? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुछ नहीं किया सत्य मामा, कार्तिक के महीने में दामोदर को दीप दान करते हुए दामोदर अष्टकम गाया था और तुलसी पूजा की थी, इसलिए मैं तुम्हारा पति बन गया। तो कृष्ण को अपना बनाने के लिए ये बहुत ही सुंदर मौका है, इसको हमें मिस नहीं करना है। तो इसमें सबसे पहले सत्यवर्त मुनि क्या कहते हैं, नमाम, मैं क्या कर रहा हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करके मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? ताकि जो हम कार्य करने वाले हैं उसमें कोई ऑब्स्टिकल, कोई विघ्न, कोई बाधा ना आए। क्योंकि संसार में देखा गया, आप जब भी कोई अच्छा काम करने जाते हो ना, उसमें जरूर कोई ना कोई विघ्न आता है। तो इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि पहले मंगलाचरण करना चाहिए। तो नमाम करके वो मंगलाचरण कहते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, ईश्वरम, मैं किसको नमस्कार कर रहा हूँ, ईश्वर को। ईश्वर का क्या मतलब है, जो कि अखिल ब्रह्मांड के नायक है, जो पूरे संसार को सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। एक ईश्वर कहकर उन्होंने ये बता दिया कि मैं उस परम परमेश्वर को, जो कि सारे देवी देवताओं के भी आधार है, उन भगवान को नमस्कार करता हूँ। बोला, अच्छा आप भगवान को नमस्कार कर रहे हो, तो भगवान कैसे हैं? भगवान कैसे हैं? तो उसके बारे में कहते हैं, नमाम ईश्वरम सच्चित आनंद रूपम। वो सत है, मतलब शुरू से थे और अंत तक रहेंगे, इटरनल है, शाश्वत है। भगवान शाश्वत हैं, सत्य हैं, उनके अतिरिक्त और सब कुछ नष्ट होने वाला है। एक ईश्वर ही सत्य है। इसके कभी कभी हम बोलते ना, हम सत्संग में जा रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है सत्संग में तो जाते हैं परंतु सत्य की कोई चर्चा नहीं होती। भगवान के विषय में कोई कुछ नहीं बताता, बस कुछ लतीफे बता दिए, कुछ स्टोरी, कुछ गाने वाने गा के बोला सत्संग से हो गया। ये सत्संग नहीं होता। सत्संग में मतलब सत्य के साथ संग होना चाहिए। और सत्य कौन है? महादेव से पूछा पार्वती जी ने, महादेव सब बोलते हैं सत्य है, ईश्वर सत्य है, तो सत्य है क्या, मुझे बताओ तो सही, आखिर सत्य किसको कहा जाता है? तब महादेव कहते हैं, कहो अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कि वो हरि, वो कृष्ण, उसका जब गुणगान किया जाता है, उसका भजन किया जाता है, वो सत्य है। इसके अतिरिक्त जगत में जो कुछ भी है वो सब सपना है, समाप्त हो जाने वाला है। तो कृष्ण भगवान कौन है? जो सत है। और चित्त का क्या मतलब है? चित्त का मतलब जो सब कुछ जानते हैं, जो सर्वज्ञ हैं। आप भगवान के विषय में ये बात सदैव याद रखना, कभी भगवान के सामने जाओ ना, हम कभी तो भगवान को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तो कहते हैं, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि। जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, जो भविष्य में घटित होने वाला, सबको जानता है। तो भगवान को ये बताने की जरूरत नहीं कि आप ऐसा करो। जब हम भगवान को बोलते ना, कृष्ण देखो तुम ऐसा करो, तो इसके दो कारण है। पहला कारण क्या है, उसको वो तो बेवकूफ है, उसको नहीं पता, मुझे अकल लेनी पड़ेगी, यानी कि भगवान को अकल नहीं है क्या? अरे वो त्रिलोकी का पालन करते हैं, उसको पता है मुझे क्या करना है। आप बताओ, मैं जानता हूँ कि आप जो करोगे वो उसी में मेरा कल्याण है। तो उसको अगर हम बता देना मेरी प्लानिंग ये है, तो पहला कारण क्या है कि हम उसको क्या समझते हैं, अपने आप को ज्यादा अकलमंद समझते हैं, उसको समझते हैं इतनी बुद्धि नहीं, हो सकता है गड़बड़ कर देगा, इसलिए मैं बता तो देखो ऐसे करना है आपको। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि हमको है ना उसके ऊपर इतना भरोसा नहीं है कि हो सकता है वो जो करे वो सही नहीं हो, मैं जो बता रहा हूँ वो ज्यादा सही है, तो ऐसा नहीं वो जो खरीदेगा वो तो है ना मेरे लिए सही नहीं होगा। लेकिन भगवान कहते हैं, सुहृदं सर्वभूतानां, मैं सबका वेलविशर हूँ, मुझे पता है मेरे लिए ये मेरे बच्चे को क्या अच्छा लगता है, मेरे बच्चे के लिए क्या कल्याणकारी है। भगवान को जीव का कल्याण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं आता। वो कुछ भी करते हैं ना, वो कुछ भी करते हैं उसमें जीव का कल्याण होता है। फिर हम बोलते हैं कि जब भक्त होते हैं तो भक्तों के ऊपर कष्ट क्यों आते हैं, है ना। भक्तों के ऊपर तो कष्ट नहीं आने चाहिए। भक्त जब भगवान सबका कल्याण करते हैं तो जो भक्त उनके शरण में है वो तो कितने सुखी होने चाहिए। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि भगवान उनको बहुत जल्दी अपने निकट बुलाना चाहते हैं। जब तक हमारे अपराधों का अकाउंट बाकी रहेगा ना, तब तक हम भगवान के पास जा सकते हैं। इसे भगवान क्या करते हैं, जो दुख 15-20 सालों सब जन्मों में मिलने वाले हैं, अगर हो सकता है 84 लाख जन्म और मिले तो भगवान एक ही जन्म में उसका हिसाब किताब पूरा कर देते। सूलिमा कंडो करे, बड़े बड़े दुखों को छोटे 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 करके सारा हिसाब किताब पूरा कर देते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी आप में इन दुखों भरी दुनिया से निकल कर मेरे धाम में आ जाए। तो भगवान इसीलिए कभी कभी परीक्षा देते हैं, कभी कभी और साथ देते हैं। सदैव भगवान हमारा साथ देते हैं कि जब भी मेरे भक्त का दुख आता है ना, तो भगवान और भी निकट हो जाते हैं। इसलिए कुंती महारानी कहती है, विपद संत शाश्वत तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यां अपुनर्भवदर्शनम। हे कृष्ण, यदि मुझे कुछ देना है तो मुझे विपत्ति दो, मुझे दुख दो, मुझे कष्ट दो। तो मानो कृष्ण ने कहा, भुवन सब आते हैं, क्या बोलते हैं,
सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तने का।
और तुम क्या पूछ रही हो, मुझे क्या दो,
दुख दो कष्ट दो।
क्या तुम्हें कष्ट पसंद लगते हैं? तब कुंती हुआ जो आंसर देती है, जो उत्तर देती है अद्भुत है। वो कहते नहीं, मुझे दुख नहीं पसंद, लेकिन भवतो दर्शनम यस्यां। जब दुख आता है ना तो मैं तुम्हारे इतने निकट आ जाती हूँ, इतना लगता है कि तुम मेरे साथ हो, मेरी बात सुन रहे हो, और तब तुम्हारा सानिध्य, तुम्हारे साथ संपर्क फील होता है। आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखो। जब हम आनंद से होते ना, तब भगवान को इतना ज्यादा प्रेम से नहीं बुलाते, लेकिन जब कोई कष्ट होता है ना, जब भी पैर के अंदर कांटा लगता है ना, फिर जैसे ओ कृष्णा ऐसा लगता है वो सुनेगा, वरना तो माला कैसे बोलता है, नींद आ रही थी, तभी वो आवाज वो हृदय से नहीं निकलती है। इसकी कुंती महारानी बोलती है, मुझे तब मजा आता है जब हृदय से आवाज निकलती है, और हृदय से तो तभी निकलती है जब कोई दुख होता है, कोई कष्ट होता है। और भगवान को ही बताने की जरूरत नहीं है, भगवान सब जानते हैं, भगवान चित हैं। और दूसरा सचित आनंद रूप, भगवान का स्वरूप कैसा है, आनंद का स्वरूप है। भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जिनके विषय में सोचकर, जिनसे मिलकर, जिनके साथ संपर्क करके, जिनका नाम लेकर जीव को आनंद आ सकता है। संसार की वस्तुओं से आपको सुख मिल सकता है, या फिर मानो कोई पूछ रहा है, वो सत्यवत मुनि जो है वो भगवान की लीला देख रहे हैं और उनसे प्रश्न किए जा रहे हैं। अच्छा, जो भगवान है जिनको आप नमस्कार कर रहे हो, जो सचित और आनंद स्वरूप हैं, वो कहाँ है, अभी कहाँ रहते हैं? तो वो कहते हैं कहाँ पर है, ब्रज में है, ब्रज में रह रहे हैं अभी। अभी वैसे तो उनका गोलोक वृंदावन धाम में ना सब राज्य है, परंतु अभी कहाँ पर है, ब्रज में है। अच्छा, वो भगवान जो ईश्वर है, सचित आनंद है, संत जीवों के सृजन पालन और संहार करने वाले हैं, वो अभी कर क्या रहे हैं? तो कह रहे अभी भाग रहे हैं, भयभीत होके भाग रहे हैं। बोला ये कैसे भगवान है आपके, ईश्वर है, सचित आनंद स्वरूप है, और अभी क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। आपको पता कैसे चला ये भाग रहे हैं? तो कहते हैं लसत कुंडल, उनके जो कुंडल है वो हिल रहे हैं, हिल रहे हैं तो चमक रहे हैं, और चमक रहे हैं तो उनके जो चीक्स हैं उन पे इतनी शाइनिंग आ रही है। तो जब दौड़ते हैं तो कैसा, जब बड़े बड़े जो भगवान की कुंडल है ना, मत्स्य के स्वरूप के हैं, मछली का स्वरूप है। और जब ऐसे भगवान भागते हैं, छोटे छोटे भगवान, इस समय भगवान की आयु कितनी है जानते हो आप लोग, 3 साल 3 महीने। इतने छोटे से कृष्ण है, छोटे छोटे से पांव है, छोटी छोटी भाग रहे हैं, तो उनके ना कुंडल ऐसे हिल रहे हैं। तो बोला हम, मुझे ऐसे उनके कुंडल को हिलते हुए देखकर ऐसा लग रहा है, और इतनी चमक रहे हैं, इतने ज्यादा चमक रहे हैं। तो बोला ये कुंडल भगवान चमक रहे हैं तो क्या स्पेशल है क्या, कोई स्पेशल जो आप बता रहे हो उनके बारे? बोले ये भूषण जो है ना, आभूषण हम क्यों पहनते हैं? ताकि हमारी सुंदरता बढ़े ना, कोई ना ज्वेलरी सी। लेकिन यशोदा मैया पता है कृष्ण को भूषण आभूषण क्यों पहनाती हैं? ताकि कृष्ण इतने सुंदर हैं तो कृष्ण को आभूषण पहनाकर थोड़ी उनके शरीर की सुंदरता को कम करने के लिए पहनाती हैं, क्योंकि वो ढेक से अगर किसी ने उनको देख लिया वो तो मर ही जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा ढका देती है, यहाँ पर विडा रख देती है, यहाँ पर बाल उनके। तो फिर है ना वो बोलते इतना वो भाग रहे हैं, तो बोला क्यों भाग रहे हैं, उनको भागने की क्या जरूरत है, और कहाँ से भाग रहे हैं? तो कहते हैं कहाँ से भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? बोलते यशोदा यशोदा के भय से, वो त्रिलोकी का नाथ जिसने एक ही क्षण में हिरण्यकश्यप को यहाँ पर रखा और फाड़ के फेंक दिया, वो यशोदा के डर से भाग रहा है। अगर यशोदा के डर से, और वो कहाँ से? बोला एक उखल है, उखल 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 को क्या बोलते हैं उर्दू में, ऐसे जिसके अंदर है ना धान होते हैं, जिसके अंदर चावल इतना बड़ा सा एक ग्राइंडिंग होता है उसके अंदर है ना घूमते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उखरी। तो हम बोलते हैं ना सिंधी में, आप लोगों को पता है जैसे ना चावल हो या कुछ हो बड़े बड़े ऐसे बने हुए होते थे, उसको से कूटे जाता था जिसपे उखल पे, आप लोगों ने देखा ना दामोदर की फोटो के पीछे एक बड़ा, उसको क्या बोलते हैं उर्दू में? हमाम दस्ता। समझ में तो आ गया ना, तो वो उखल के ऊपर बैठे हुए थे और उससे भाग रहे। तो अब यहाँ तो ये प्रश्न होता है कि उस त्रिलोकी के नाथ को जरूरत नहीं थी उखल के ऊपर बैठने की और भागने की। तो यहाँ से हम श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद के नवे अध्याय से कुछ श्लोक लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इस कहानी का बैकग्राउंड क्या है, आखिर हुआ क्या था। तो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद के नवे अध्याय के श्लोक नंबर 1 में कहते हैं, एक दालिह दासीशु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतरणि युक्तासु निर्ममंथं स्वयं दधि। एक बार यशोदा मतलब क्या है, जो यश को देने वाली है, जो सबको यश देती है, सबको मान देती है, सबको आदर देती है। और चैतन्य महाप्रभु ने ये शर्त रखी है कि आपको यदि सदैव भगवान को हृदय में बिठाना है ना, तो एक काम करो कि आप दूसरों को सम्मान देना सीखो। हरे जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं ना, तो भगवान हम पर कृपा करते हैं, तो भगवान हमें, आज हमारा हम अंदर से स्वभाव कैसा हो गया जानते हो, हम ऐसे सोचते हैं कैसे दूसरों को हार्ट करें, चुभने वाले शब्द बोलते हैं। बस कोई ना कोई ऐसा होता है कि दूसरों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि किसी को दुखी करके आना चाहता है, लोगों को खुद के सुख से इतना खुश नहीं है, दूसरों के सुख से खुश होते और किसी तरह से उनको जब हार्ट करते ना तो उनको लगता है मैंने आज कुछ अच्छा किया। लेकिन भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। हम यदि किसी को सुख नहीं दे सकते, किसी को खुशियां नहीं दे सकते, तो कम से कम इतना तो करें कि किसी के दुख का कारण ना बने। इसलिए सबसे पहले भले छोटा सा भी भक्त हो, कोई भी हो, हमें उसका आदर करना सीखना चाहिए। महाप्रभु कहते हैं अमानी ना माना देना, स्वयं के लिए कभी मान की उपेक्षा नहीं करना और दूसरे सब भक्तों का सम्मान करना, अमानी ना माना देना, कीर्तनी हंसनाहरि, कभी आप भगवान का भजन कर सकते हो। और फिर क्या होता है, जब आप दूसरों को यश देते हो तो क्या मिलता है? क्या मिला यशोदा को? कृष्ण मिला। कितनी देखो, यशोदा वो यश देने वाली है, उसकी बदली में उनको कृष्ण मिला। तो यहाँ से सीखना, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। यश अगर हम दूसरों को देंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे, आदर देंगे, तो उसकी बदली में हमको कृष्ण मिलेगा। और वो खलत जब एकदा ग्रह दासीशु, एक दिन सारी जितनी भी दासियां थी, अब यशोदा मैया जो थी वो ब्रज मंडल में रानी है, नंद राजा राजा है तो उनके घर में बहुत सारी दास दासियां हैं, लेकिन उन्होंने सारी दास दासियों को अलग अलग काम में लगा दिया। क्यों लगा दिया, इतना सारा काम क्यों था? क्योंकि आज दिवाली का दिन था और कल इंद्र पूजा। इंद्र पूजा के दिन तो उनको बहुत सारी मिठाइयां, बहुत सारी सफाइयां, बहुत काम करना पड़ता था, तो सारी गोपियों को अलग अलग काम में, ग्रह दासीशु सारी काम अलग अलग लगा। लेकिन खुद क्या करने लगी, निर्मम अंतम स्वयं दधी, वो एक बड़ी सी मटकी के अंदर स्वयं दही को बिलोने लगी, उसमें से माखन लगाने लगी। तो आखिर रानी को क्या जरूरत पड़ी माखन निकालने की, उनकी और भी बहुत सारी दासियां थी तो किसी दासी को बिठा देते। लेकिन यशोदा मैया पहली बार माखन निकाल रही थी, 3 साल से कृष्ण के लिए माखन ही निकाला, जब तक कृष्ण छोटे थे इतनी मस्ती करते थे तो उनको टाइम ही नहीं मिलता था कि वो बैठ गए ना माखन माखन निकाले। लेकिन अब से जब से कृष्ण चलना शुरू हुए ना, तब से कृष्ण ने इतना हंगामा कर दिया पूरे ब्रज में, कभी उस गोपी के घर में जाकर माखन खाते, कभी उस गोपी के घर में जाकर माखन खाते, सारी गोपियों के नाक में बंद कर दिया। फिर सारी गोपियां कंप्लेन लेके आती यशोदा मैया के पास कि देखो यशोदा रानी, ये जो नंद गांव है ना, इसमें या तो हम रहेंगे या तुम्हारा पुत्र रहेगा, हम इसके साथ नहीं रह सकते, इसने हम सबके घर से माखन चोरी किया, चोर है तेरा लाला चोर। अभी 3 साल का है, अभी से ये सब इसको चोर चोर बोल रही है, बड़ा होगा तो कोई लड़की भी नहीं देगा इसको, इसलिए क्या करती हूँ अब मैं, क्योंकि मेरे घर में दास दासियां माखन निकालती हैं तो लगता है वो इतने प्रेम से नहीं निकालती होंगी, अब मैं अपने लाला के लिए निर्मम अंतम स्वयं दधी स्वयं माखन निकाल देंगी। और क्या कर रही थी, जैसे जैसे वो माखन निकालेंगी, अब कोई भी कार्य करते हैं तो कैसे करना चाहिए वो बता दें शुकदेव गोस्वामी। यानी यानी ही गीतानी तत्पाल चरितानी च करी निर्मंथनी काले स्मरंती तान्य गायता। यानी यानी ही गीतानी, अब देखो यशोदा मैया जाहिर सी बात है दिवाली का दिन था तो बहुत ही सुंदर वस्त्र पहन के बैठी थी, बहुत सुंदर चूड़ियां थी हाथों में, बालों में फूल लगे हुए थे, और जैसे वो जला रही थी ना उस माखन को, मंथ रही थी तो उनकी चूड़ियों से आवाज आ रही थी, सन 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 की आवाज आ रही थी, और उसके बाद मटकी के अंदर जो मंथानी थी उससे मृदंग की आवाज आ रही थी, और वो क्या कर रही थी, यानी यानी ही गीतानी, बहुत सुंदर सुंदर गीत गा रही थी। कौन से गीत गा रही थी, कोई फिल्मी गीत नहीं गा रही थी। तब बाल चरितानी से भगवान की जो बाल लीलाएं थी छोटे छोटे, कि किस तरह से उन्होंने पूतना का उद्धार किया, किस तरह से तृणावत का शक्तासुर का उद्धार किया, जो जो भी भगवान लीला करते थे ना, पहले ब्रज में सारे जितने भी कवि होते थे गायक होते थे वो उनको लिख देते थे, भजन बना देते थे, फिर जो भी गोपियां थी सारे दिन वो भजन गाती रहती थी। अब देखो एक व्यक्ति के पास 3 चीजें होती हैं, मन कर्म और वचन। यशोदा मैया मन से सोच रहे थे, अभी कृष्ण सो रहे हैं, वो समय कौन सा था, एकदम प्रभात का समय, सुबह को 4 बजे, वास्तव में भक्ति करने का समय वही होता है, इसलिए वैसे ना भी कर सके तो भी ये कार्तिक का महीना है, ध्यान रखिए वो समय जाया मत कीजिएगा, अपने से सिंसियर हो जाए वो वाला समय उठकर जरूर भगवान, ये जो सुबह को 3:30 बजे से लेकर 6:30 बजे का वो स्पेशल भगवान से मिलने का समय है, उस समय में जरूर उठकर भगवान का नाम स्मरण करना। तो यशोदा मैया इतना सवेरे उठकर वो सोच रही थी अभी उठ जाएगा फिर तो कुछ काम करने नहीं देगा, तो मैं जल्दी जल्दी से माखन निकाल देती हूँ, मन में वो उनके विषय में सोच रही थी, हाथों से उनके लिए माखन बना रही थी और मुख से उनके जो भजन है वो कीर्तन गा रही थी। इसके भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं एक जीव की परफेक्शन यही है, क्या करना है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध, बस ऐसा करना आ जाए ना यदि हमको कि मन कर्म और वचन से हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम ये सोच कर करें कि हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, यही कॉन्शियसनेस है, यही भक्ति है और यही हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता है। इसलिए कुछ भी काम करो, यदि घर में हम भी रोटी बना रहे हैं तो क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कुछ भी कर लो, मन के अंदर सोचना चाहिए कृष्ण के लिए बना रहे, कृष्ण के लिए कर रहे, बस वो कार्य ही भक्ति बन जाएगा। आना कृष्ण कॉन्शियसनेस इज मेन ऑफ द चेंज ऑफ द कॉन्शियसनेस, खाली अपनी सोच को चेंज करना है। तो इस तरह से जब वो कार्य कर रही थी तो जैसे आवाज आ रही थी मधुर मधुर गीत की आवाज आई, तो उस समय भगवान क्या कर रहे थे? सो रहे थे। लेकिन ये भगवान ने प्रतिज्ञा ली है कि जब मेरा भक्त मुझे बुलाएगा तब मैं अवश्य दौड़ा दौड़ाऊंगा। तो भगवान ने सोचा मेरा भक्त, मेरी परम प्रिय माता मुझे बुला रही है, मेरा नाम उच्चारण कर रही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब अगर मैं नहीं जाऊंगा तो संसार क्या कहेगा, सोचेगा देखो खाली बोलता है लेकिन इतना सुंदर सुंदर मैया भजन करके बुला रही है तो भी जाता तो नहीं, तो इस समय मुझे सोना नहीं चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, उठ जाते हैं और छोटे से थे तो ऐसे अपनी आंखों को मसलते मसलते मैया के पास जाते। मैया की आंखें बंद है, वो गा रही हैं, वो बोली मैया मुझे भूख लगी है। लेकिन छोटा सा उसकी आवाज नहीं, इधर से चूड़ियों की आवाज, उधर से मटकी की आवाज, उसको तो बिल्कुल यशोदा मैया को कन्हैया की आवाज तो आई नहीं। फिर कन्हैया सोचा ये तो सुनी नहीं रही है, फिर मैं क्या करूं? तो जो डंडी थी ना मंथानी, उसको इसके कृष्ण ने छोटे से हाथों से दोनों से पकड़ लिया कि मैं इसको पकड़ लूंगा तो फिर मैया का काम रुक जाएगा, तो उसकी आंखें खुलेंगी। तो जैसे उस डंडी को भगवान ने पकड़ा तो यशोदा मैया ने देखा कि कौन आया, तो कृष्ण को देखा और फिर यशोदा मैया ने बहुत ही सुंदर सुंदर स्माइल के साथ कृष्ण को बोला जा के ना अभी देखो ये अभी तंग करेगा, मुझे काम नहीं करने देगा। तो कृष्ण बोलते मैया मुझे दूध पीना है, मुझे भूख लगी है। तो छोटे छोटे शब्दों में ऐसे से भगवान ने बोला। तो यशोदा मैया ने बोला बेट लाला अभी मैं माखन निकाल रहा हूं, तो कभी वो करने देगा। बोला मैया संसार में जितना भी परिश्रम है ना, जीव जितना भी परिश्रम करता है उसका फल क्या है, मैं हूं। मैं अगर किसी को मिल गया तो फिर उसको परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जन्म जन्मांतर तक जितनी तपस्या की है ना उसके परिणाम में मैं आपको मिला हूँ, और आप अब भी परिश्रम करना चाहती हो रख दीजिए मैया, अब आपको ये सब मेहनत करने की जरूरत नहीं, अब तो आप फल को बोलिए, अब तो आप प्रेम कीजिए, मैं आपको मिल गया, अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यशोदा मैया को तो करने नहीं देंगे। अब यशोदा मैया ने बोला चलो ठीक है आज लल्ला पहले तुझे दूध पिला। तो यशोदा मैया उसको दूध पिलाने लगी और कृष्ण इतने खुश हुए कि मेरी जीत हो गई, देखो मैंने मम्मी को काम करने से रोक दिया और अब मेरी बात मानी, मतलब अब मैंने ना अचीव कर लिया, मुझे करना आ गया कि माताजी का काम रोक के मैंने अभी अपनी बात मनवा ली। तो कृष्ण यशोदा मैया को इतना प्यार से देख रहे हैं, गोद में लेटे हुए दूध पी रहे हैं और यशोदा मैया कृष्ण को देख रही हैं। और उस समय शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस जब भी माता और पुत्र का जो संबंध है उनके बीच में जो प्रेम है ना, वो उसी समय उत्पन्न होता है जब माता अपने संतान को दूध पिलाती है। ये बहुत ही भगवान की कृपा है जब माता जो है अपने बच्चे को दूध पिलाती है। इससे पहले क्या होता था, पहले माताएं बहुत समय तक दूध पिलाती थी तो बच्चे बहुत है ना प्रेम करते थे माता। आजकल जो डब्बे वब्बे का दूध पीते हैं ना वो इतना प्रेम बढ़ता नहीं है। इसलिए ऐसा शास्त्र बताया गया है कि कम से कम भी 2-2.5 साल तक माता को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर से कृष्ण यशोदा मैया को देखकर सुंदर हो गया पूरा वातावरण, और इससे ज्यादा और क्या सुंदर हो सकता है। वो कृष्ण बार बार हंस रहे हैं, बार बार यशोदा मैया को वरना मस्ती कर रहे, यशोदा मैया भी उसको देख रही है। अब देखो ये दोनों के बीच में आनंद है और तीसरा जल रहा है। हमें जो संसार में होता है दो लोग प्यार कर रहे हो, दो लोग आनंद से होते हो तो तीसरे से वो खुशी देखी नहीं जाती, फिर उसको जलन होने लगती है। तो उसी तरह से क्या हुआ कि यशोदा मैया के घर में 9 लाख गायें थी और उनसे एक गाय जो थी वो स्पेशल थी, जिसको सुगंधित गाय जो दूध घास खाती थी उन गायों का दूध पिलाया जाता था। और उसके दूध में इतनी सुगंध थी, वो जो पद्मगंधा, उसका गाय का नाम था पद्मगंधा, उसका दूध जो है वो कृष्ण को पिलाया हुआ था। तो अब तो कृष्ण 3 साल के थे, तो गाय का दूध भी पीते थे, तो फिर उसके लिए स्पेशल दूध था, वो चूल्हे पे चढ़ाया हुआ था। और चूल्हे पे चढ़ाया हुआ था ये सोचकर ये कृष्ण बाद में ये वाला दूध देंगे। लेकिन जब उस दूध ने सोचा, अब आपको लगेगा दूध क्या सोचेगा, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो भी वस्तु है ना वो सोचती है। आध्यात्मिक जगत में दूध भी सोचता है, कंकड़ भी सोचता है, पत्थर भी सोचता है, दीवारें भी सोचती है, पृथ्वी सोचती है, आकाश सोचता है। तो दूध ने सोचा मेरे जीवन का लक्ष्य तो यही था कि मैं किसकी सेवा करूंगा, कृष्ण मुझे पान करेंगे, कृष्ण मुझे पिएंगे, तभी मेरा जीवन सार्थक होगा। लेकिन ये कृष्ण तो किसका दूध पी रहे, मैया का दूध पी रहे, अब मेरा दूध का तो वो उपयोग करेंगे। अगर मेरा जीवन कृष्ण की सेवा में समर्पित नहीं हो सकता, फिर तो मुझे आग में जल के भस्म हो जाना चाहिए, आग में कूद के आत्महत्या करने का निश्चय ले लिया। और इसीलिए दूध ने पूरा उबल गया, उबल के ऊपर आ गया, और जैसे ही ऊपर आया तो कैसी आवाज आती है, ऐसे आवाज आई, ऊपर आया। और यशोदा मैया जब वो कृष्ण को देख रही थी, और जैसे ही ऊपर दूध आया तो यशोदा मैया ने सोचा भाई मेरे संग कृष्ण कभी भी पी सकता है, लेकिन वो दूध गिर गया तो। इसलिए यशोदा मैया ने कृष्ण को देखा, वो पी रहे थे मदद से, लेकिन जबर से उसको उठा के इधर रखा और खुद गई किचन में वो दूध को चूल्हे से उतारने के लिए। अभी हमारे पास स्टोव होता ना, इसे बंद कर देते, लेकिन पहले इतनी सारी लकड़ियां होती थी और एक गाय का दूध जा रहा है 10-8 किलो तो होगा, तो इतना बड़ा पतीला तो उसको उठाकर रखने में समय तो लगेगा। अभी कृष्ण सोच रहा है ये मैया मुझसे ना, मैं इसका दूध पी रहा हूँ, मैं त्रिलोकी का नाथ हूँ, यहाँ पर आया हूँ दूध पीने के लिए, और इसको मेरी कोई इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं, मुझे यहाँ पर गिरा के रख के गई, उसको तो वो 50 रुपए लीटर वाला दूध ज्यादा अच्छा लगता है, वो वहां पर गिर रहा है तो मुझे छोड़ के चली गई। तो कृष्ण ने बोला मुझे ना कुछ करना पड़ेगा, अब तो मुझे अपनी इम्पोर्टेंस सबको बतानी पड़ेगी कि मैं, मेरी भी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो कोई पूछे नहीं मेरी। तो फिर ना उन्होंने कृष्ण ने सोचा मैं क्या करूँ क्या करूँ, तो मैया को मुझे सिखाना ही पड़ेगा। तो वहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ था, सिल, ऐसे मसाला पीते ना वो सिल पट्टा पड़ा हुआ था, तो उसने क्या किया कृष्ण ने, जो मटकी में भगवान यशोदा मैया मक्खन निकाल रही थी उसको ऐसे करके मारा जोर से, और नीचे से बिल्कुल उसका जो बेस है ना उसके, उससे पूरा दूध दही मक्खन सब गिरकर पूरा इतना बड़ा उनका जो आंगन था उस सारे आंगन में दूध दही बिखर गया। कृष्ण ने सोचा कि मैंने कितना गलत काम किया है, एक तो मटका फोड़ा, ऊपर से इतना सारा सामान गिरा दिया, इतनी गंदगी, कल आज दिवाली थी और दिवाली के दिन कितनी सफाई की होगी, सारा घर गंदा, अभी मेरी मम्मी मुझे आएगी, मैं छोड़ेगी नहीं, मैं करूँ तो क्या करूँ, किधर जाऊँ, वो त्रिलोकी का नाथ है जो 2 पग में पूरे त्रिलोकी को नाप लेता है, वो आज सोच रहा है मैं कैसे छुपूं, इस घर में मैं कहाँ जाके छुपूं, तो ढूंढ रहा है। तो उन्होंने सोचा ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मैं पता ही चलेगा मैं कहा। तो कृष्ण के छोटे छोटे चरण हैं, और छोटे छोटे चरण से वो दूध दही गिरे ना, वहां से पांव तो जा रहे कृष्ण के तो गीले हो गए, तो वो दूध दही वाले चरण छप 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 करके वो ये स्तंभ बना होता है वहां पर खंबा, उसके पीछे जाकर ऐसे आंखें बंद कर खड़ा, उनको लग रहा है मैं आंखें बंद कर तो मुझे कोई देखेगा नहीं, लेकिन आंखें बंद करेंगे तो हम नहीं देख सकेंगे ना, वो तो देख सकेंगे। तो वो ऐसे करके खड़ा हो गया, यशोदा मैया आई और देख रही साफ साफ कि यहाँ पर निशान बने हुए, उनको तो पता चला इधर ही गए होंगे। तो यशोदा मैया ना ये पहले तो यशोदा मैया ने जब देखा कि इतना सारा दूध दही गिरा हुआ है तो उनको थोड़ा क्रोध आया, फिर जब मटकी को देखा तो यशोदा मैया की हंसी छूट गई, बोले ये कितना चालाक है, ऊपर से थोड़ा अगर मारा होता तो मटकी का जो बाकी दूध दही है वो मतलब बच जाता, इतना बदमाश है, देखो इतना नीचे से एक बूंद भी नहीं बची है, तो बुद्धिमान और है भी देखो शक्तिशाली, पूरा मटका तोड़ दिया। अभी चलो ठीक है दूध दही गिरा तो सही है सतत हो, पर वो भी क्या करना चाहिए, इसको सबक सिखाना चाहिए। सब लोग इसकी कंप्लेन करती, मैं नहीं मानती, आज तो मैंने खुद देखा है, इसको अगर मैंने सबक नहीं सिखाया तो और भी बदमाश हो जाएगा। तो यशोदा मैया ने एक लकड़ी उठाई और उसके पीछे भागने लगी। यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रही है, कृष्ण के इतने छोटे छोटे चरण है, वो आगे आगे भाग रहा है, कृष्ण आगे आगे भाग रहा है, आंखें खोल के बार बार पीछे देख रहा है, यशोदा मैया कितना पीछे, अभी कितना पीछे है, कितना आगे और मुझे भागना है, वो और भी तेज भाग रही है। और यशोदा मैया मोटी है, बड़ी है, उनका शरीर भी बड़ा है, हेवी है, तो वो भाग रही है, थस रही ऐसे करके भाग रही, कृष्ण और भी। तो ऐसे जब यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रही है, तो यशोदा मैया ने जो फूल लगाए थे ना गजरे के, वो नीचे गिर रहे हैं। तो वहां से शुकदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, उस टाइम पर ये फूल सोच रहे हैं कि ये मैया कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कितनी परिश्रम कर रही है, कितनी कोशिश कर रही है, कितनी मेहनत कर रही है। तो वो भक्त जो भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, उसके सर पे नहीं, उसके तो पांव में बैठना चाहिए, इसलिए वो गिर गिर के उनके चरणों में आ रहे हैं। वो फूल भी सोच रहे हैं और वो भाग रहा है, यशोदा मैया कृष्ण पीछे देखते देखते भाग रहे हैं। और ऐसे अब यहाँ पर क्या लिखा है, परामृष्टमत्यंत तो द्रुत्य गोप्या, परामृष्टम मतलब कृष्ण से भी ज्यादा अधिक जोर से दौड़कर, अत्यंत मतलब और भी ज्यादा दौड़कर द्रुत्य गोप्या, उस यशोदा मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया। अब तो कृष्ण को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद देखो कृष्ण की एक क्वालिटी है, जब जीव अपनी ओर से पूरा परिश्रम कर लेता है, पूरी मेहनत कर लेता है और देखता है कि वो कृष्ण जब देखता है कि उसने अपनी ओर से 100% प्रयास कर लिया है, तो भगवान हाथ में आ जाते हैं। तो पहला कदम, ऐसे बोलते हैं ना, आप अगर भगवान के प्रति एक कदम बढ़ाओगे तो भगवान आपके साथ 10 कदम बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी भगवान की देखो ये ना गेम प्लानिंग क्या है कि पहला कदम भक्त बढ़ाएगा, वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, वो पहला कदम जितना बड़ा आप बढ़ा सकते हो, जितनी मेहनत आपकी तरफ से आप कर सकते हो आपके लिए, बाकी जो भी कमी होगी, जो रास्ता होगा उसको पूरा करेंगे। तो इस तरह से जब यशोदा मैया ने उनको पकड़ लिया, उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट, पकड़ा गया तो जोर जोर से रोने लगे, रुदंतम मुहुर नेत्रम, मुहुर मतलब बार बार से रो रहे हैं, और दोनों नेत्रों को युगम मृजंतम, दोनों युगम आई दोनों मृजंतम मतलब मसल रहे हैं, जैसे छोटा बच्चा जब पकड़ा जाता है तो कैसे रोता है, तो आंखों को ऐसे मसल मसल के रो रहे हैं। और यशोदा मैया ने जो काजल लगाया है ना, पूरा गालों पर बह रहा है, पूरा काजल कृष्ण का गालों में बह रहा है। कराम भुजम युग में ना, करा मतलब दोनों हाथों से, कर कहते हाथों को, आंखों को मसलते हुए युग में ना सातंक नेत्रम, सातंक मतलब भयभीत हैं उनके नेत्र। आपने देखा होगा जो दामोदर की विग्रह है, मूर्ति है, उस फोटो में कृष्ण की आंखें कैसी हैं, सिकुड़ के रो रहे हैं, ऐसा फेज है उनका। तो ऐसे रोते हुए करा मुझे युग में मुहुश्वास कंप, मुहुश्वास मतलब वो बार बार गहरी सांस लेते हैं, ऐसे करके बच्चे रोते हैं ना, जब रो रहे होते हैं, आंखों को मसल रहे हैं, सांस लेते हैं। और कंप थी रेखांक कंठ, उनकी जो कंठ है, कंठ मतलब जो गला है, उन पे 3 रेखाएं आ जाती हैं। वो छोटा सा कृष्ण है, आप सब ऐसा इमेजिन करो कि आपको भी वो दिखे, वो इतना छोटा है, वो रो रहा है, आवाज निकाल रहा है, मुहुश्वास, और उसके गले से जो ये हार बना हुआ ना, जो छोटा सा, वो ऊपर नीचे हो रहा है, और 3 रेखाएं जो है वो निकल रही हैं। और स्थित ग्रेवम दामोदरम भक्ति बलम, स्थित ग्रेवम यानी अब उनको पकड़ लिया है, और यशोदा मैया जो है उनको बांधने की कोशिश करती है कि ये बहुत नटखट हो गया है, एक तो ये नटखट हो गया है, और ये जो उखल है ना वो इसका साथ देती है, क्योंकि वो क्या करता है, जब भी वो चढ़ता है ना इसके ऊपर, तभी मटकियां फोड़ता है या चढ़ता है। तो अभी मुझे इन दोनों में इसने खल का साथ दिया है, और खल के थे जो अपराधी होते हैं, तो जो ना संघ जिनको आए इसका संघ भी गलत के साथ हो गया। अभी मैं इन दोनों को सजा दूंगी, और क्या करूंगी, इन दोनों को बांधूंगी। लेकिन बांधने के लिए भगवान को ये शब्द यूज किया है, सिंदर ग्रेवम दामोदरम भक्ति बांधा, कि भगवान को हम रस्सी से नहीं बांध सकते, भगवान को बांधना है तो भक्ति बद्धम, भक्ति के साथ। तो इसीलिए ये सब लीला आप सब जानते हो, यशोदा मैया ने जब रस्सी से बांधने का प्रयास किया, यशोदा मैया के पास रस्सी पड़ी थी, वो तो मक्खन ऐसे कर रही थी ना, तो उसको बांधा जब तो वो रस्सी दो उंगल छोटी हो गई, उसके अंदर दूसरी, बोला ये तो रस्सी छोटी हो गई, दासियां खड़ी थी, दूसरी रस्सी लेके आओ, दूसरी रस्सी लेके आए, तो दूसरी रस्सी को भी जब बांधा तो दो उंगल छोटी, फिर बोला और भी दूसरी लेके आओ, जितनी भी हमारे घर में रस्सियां ना वो सब लेके आओ, सारी रस्सियों को जब बांधा तो वो रस्सी भी दो उंगल। यशोदा मैया परेशान, इतना सब तो कृष्ण का कमर है, मुट्ठी में आ जाए, इतनी सी तो करधनी पहनते हैं और इतनी सारी रस्सी है उसे बंद ही नहीं रहा है, तो जय हो। तो यशोदा मैया बहुत परेशान हो गई, गोपियां कहती हैं यशोदा तेरे लाला के भाग्य में बंधना है ही नहीं। तभी यशोदा मैया कहती हैं मैं तो इसे बांध के रहूंगी, भले मेरा पूरा जीवन गुजर जाए। जब कृष्ण ने सुना कि मैया ने आज ये प्रण कर लिया है कि भले मेरा जीवन, आप हरे कृष्ण यदि आप मेरे साथ रहेंगे तभी समझना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो बोला आज तो मैया ने ये प्रण कर लिया है कि मुझे बांध के ही रहेगी। तो जब देखा अब यशोदा मैया से भी, लेकिन भगवान की शक्तियां भगवान को बनने थोड़ी देती हैं, भगवान तो मुक्त है ना, और जो मुक्त है तभी तो वो हमें मुक्त करा सकता है, इसीलिए तो हम बोलते हैं भगवान ही हमें मुक्त करा सकता है क्योंकि वो मुक्त है। लेकिन आज इस लीला के द्वारा भगवान ये दिखाएंगे कि मैं अगर बंधा हुआ भी होगा ना तो भी आपको मुक्त करा सकता हूँ। आज भगवान ये लीला के द्वारा हमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं बंधता हूँ तो केवल प्रेम के साथ बंधता हूँ, और प्रेम के साथ बंध कर भी मैं जीव को मुक्त करा सकता। तो यशोदा मैया ने बहुत प्रयास किया, जब भगवान ने देखा पूरा प्रयास कर लिया यशोदा मैया ने, और फिर अब वो थक गई हैं, हार गई हैं, तो भगवान ने कहा अब ये दो उंगल की कमी पूरी करनी पड़ेगी। वो दो उंगल की कमी कौन सी है, एक उंगल है भक्त का प्रयास, भक्त जब अपने ऊपर अपनी ओर से पूरा प्रयास कर लेता है तो दूसरी उंगल की कमी को भगवान पूरा करते हैं, और वो है भगवान की कृपा। याद रखिए एक बात को समझ लीजिए, हमारी किसी भी भक्ति साधना में वो शक्ति नहीं है जिससे भगवान हमें मिल जाए। इस कलयुग में हम कोई ऐसी साधना करें, हमारी साधना है क्या, नाम जप करते हैं मन तो उसमें लगता नहीं है, चार दिन मंगला करते हैं पांचवें दिन छूट जाती है, क्या इस साधना से भगवत प्राप्ति हो सकती है? साधना के बल पे कृष्ण को प्राप्त करना संभव नहीं है, मिलेंगे तो वो अपनी कृपा से मिलेंगे, लेकिन कृपा कब होगी, जब आप अपनी ओर से 100% प्रयास करोगे, पूरी मेहनत करनी है, पूरी मेहनत जी जान लगा दी यशोदा मैया ने उनको बांधने की, जब देखा कृष्ण ने पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत की है तब तो उसे फल मिलना चाहिए, और फल के द्वारा भक्ति से वो बंध गए कृष्ण उनके। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था कि कृष्ण बंध गए हैं तो शायद अब कृष्ण दुखी होंगे, लेकिन आगे सत्यवत मुनि कहते हैं श्लोक नंबर 3 में, इति धिक्ष्वलीलाभिरानन्द कुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् कलिशीतकेषु प्रत्यर्जितत्वम् पुनः प्रेमसंस्तं शतावृतिमन्ते। इति धिक्ष्व लीला, ये भगवान की लीला भगवान क्यों कर रहे हैं, हम सबको आनंद देने के लिए। भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म मेरे कर्म सब दिव्य है, और मैं इसलिए ये लीलाएं करता हूँ ताकि मेरे भक्त इन लीलाओं को सुने और ये जान लें कि जब मैं मुझसे जब कोई प्यार करता है, भगवान को भक्ति भगवान को भक्ति पूजा से इतना आनंद नहीं आता है जब हम उन्हें अपना मानते हैं, जब हम उनसे अपना, जब यशोदा मैया उसे अपना बच्चा समझ रही है ना, वो त्रिलोकी का नाथ है, जब वो वैकुंठ में रहता है, जब वो गोलोक में रहता है, तब भी उसकी भक्ति पूजा प्रॉपरली हो रही होती है। फिर संसार में क्यों आता है? ताकि हम उसे अपना समझें, उनसे प्रेम करें। भगवान हमारे प्रेम को प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, और आप सब देख रहे हैं कि यशोदा मैया कितना प्रेम कर रही है, तो हमको भगवान के साथ संबंध जोड़ना है। जैसे यशोदा कृष्ण को अपना समझ रही है, जब तक हम उसको अपना नहीं समझेंगे ना, कृष्ण नहीं मिलेंगे। इसलिए इसी श्री प्रभुपाद जी बोले, घर में ठाकुर जी को विराजमान करो तब वो तुम्हारे हो जाएंगे, तब हम मतलब बहुत ही भाव के साथ, फखर के साथ करें, ये मेरे ठाकुर जी हैं, ये मेरे हैं। जब वो मेरा हो जाता है ना, तभी वो प्राप्त होता है। इसलिए आगे वो कहते, इति विश्व लीला में आनंद कुंडे, ये जो लीला को देखकर आनंद के कुंड में, आनंद के समुद्र में सब, वो स्वयं भगवान भी हैं और भगवान के भक्त भी हैं। और स्वगोषम निमज्जन्तम आख्य पर्यंतम, स्वगोषम जितने भी गोप गोपियां वो सब देख रहे हैं कृष्ण को, वो बांधे हुए हैं। और तदीयेषु तज्येषु, ये भगवान त्याग देते हैं ईशु, यानी अपने ऐश्वर्य को त्याग देते हैं। भगवान के जो भगवतता है, भगवान का जो ऐश्वर्य है, वो तो ये भगवान को बांधने नहीं देता, लेकिन भगवान का जब भक्त प्रयास करता है तो भगवान की सारी शक्तियां हार जाती हैं। प्रेम के आगे भगवान हार जाते हैं। जब यशोदा ने जब ये प्रयास, ये प्रण किया कि मुझे कृष्ण को बांधना है, तो भगवान भूल गए कि मैं तो त्रिलोकी का नाथ हूँ, मैं कैसे बन सकता हूँ। कृष्ण को बांधने के दो लोगों ने प्रयास किए थे, किस किस ने? एक तो दुर्योधन ने, वो तो बांध नहीं सका। क्यों? क्योंकि वो उसको घमंड से, अपने पावर से, अपने बल से बांधना चाहता था। लेकिन यशोदा कैसे बांधना चाहती थी? अपने प्रेम से, भक्ति से। तो यदि भगवान को अपनी, आपको भी यदि भगवान को बांधना है, तो वो केवल प्रेम और भक्ति से ही बांधा जा सकता है। तो सत्यव्रत मुनि कहते हैं, पूर्ण प्रेम तस्तम शताव्रति वंदे, कि मैं ऐसे भगवान को शताव्रति वंदे, शताव्रति मतलब हजारों बार प्रणाम करता हूँ। तो अब इतनी तो उन्होंने प्रशंसा की। अब दो श्लोकों में, पहले वो एक श्लोक में, श्लोक नंबर 4 में भगवान से कुछ मांगते हैं। हम भी आते हैं ना भगवान से कुछ मांगने के लिए? आज वो हमें सिखा रहे हैं कि भगवान से मांगना क्या है। हमको ना मांगना आना चाहिए। एक बात मैंने आपको बहुत ही सुंदर मुझे लगती है, बोलने में भी बहुत अच्छा मजा आएगा सुनकर, कि भगवान तो वो कोई भी वरदान दे सकते हैं। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, कोई भी वरदान आप मांगोगे ना, भगवान दे सकते हैं। अगर इतना मांगोगे तो इतना मिलेगा, अगर इतना मांगोगे तो इतना मिलेगा। फिर इतना मांगकर वो खराब करने की क्या जरूरत है? मांगना है तो इतना मांगो, मांगना है तो इतना कुछ मांगो कि और कुछ मांगने के लिए रह नहीं जाए। रब से मांगना है तो रब को मांगो, जो रब दे रहा तो सब दे रहा, फिर क्या रह जाएगा? तो इसलिए वो सिखा रहे हैं कि आपको क्या मांगना है। वे कहते हैं, वरम देव मोक्षम ना मोक्षम वदेवा न जानम वरे हम वरे शतपीता इदं देव पुरात गोपाल बालम सदा मे मनस्य वीरक्तम कि मन्ये। वरम देव, हे भगवान मुझे वर दो। क्यों? आप तो वर देने वाले हो। बोला अच्छा ठीक है, मोक्ष दे दो। मोक्षम, बोला नहीं मोक्ष नहीं चाहिए, अपना मोक्ष अपने पास रखो। बोला ठीक है मोक्ष नहीं दो, मोक्ष से भी बढ़कर क्या चाहिए? मोक्षम वदिम्बा, मोक्ष से भी बढ़कर अपना गौरव धाम दे दो। बोला नहीं वो भी नहीं चाहिए। अच्छा वो भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? देखो भक्त मोक्ष नहीं मांगता, भौतिक वस्तु की तो क्या बात है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न सौंदर्यम कविता जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिया है सुखी मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अच्छे कुल में जन्म नहीं चाहिए और ना ही मुझे बहुत सारी अनुयायी चाहिए, बहुत सारी सुंदर स्त्रियों की याचना नहीं कर रहा हूँ। मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवता भक्ति, मुझे तो जन्म मरण के चक्कर से छूटना भी नहीं है, बार बार जन्म दो, लेकिन एक प्रॉमिस करो, हर जन्म में तुम्हारी भक्ति करने का अवसर जरूर होगा। तो ये क्या कहते हैं कि मुझे नचार्य वर्णे हम वरेशा दपिहा, मुझे ये बड़े बड़े वरदान भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत कुछ नहीं चाहिए। तो बोला बाबा फिर तुम ही बताओ तुम्हें क्या दूं। कृष्ण पूछ रहे हैं और वो बताते हैं,
इदं देवपुरनाथ गोपाल बालम, इदं देवपुरनाथ
देख रहा हूँ एक बपो बना, ये वाला जो आपका स्वरूप है कैसा है, गोपाल बालम छोटा सा है, गोपाल है, भयभीत है, रो रहा है, आंखों में से आंसू निकल, ये वाला स्वरूप मैं इसका क्या करूँ। बोला सदा में मनस्या, बस ये सुंदर स्वरूप जो है वो हमेशा मेरे मन में बना रहे, सदा में मनस्या फिरस्तम के मानिए, ये मिल जाए बस के मानिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बोला अच्छा ये स्वरूप में ऐसा क्या है, इस स्वरूप मेरे तो बहुत सारे सुंदर सुंदर स्वरूप हैं, तुम कोई भी स्वरूप है ना उसकी मांग कर सकते थे, आखिर इस स्वरूप में ऐसा क्या स्पेशल है। तो कहते हैं इदं देवकम्बोजम् अत्यंत नीलम् है ना, वो तो कमल के जैसा है, ओम्बोज कमल के जैसा, अत्यंत नील ये तो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि पूरे संसार की सुंदरता इसके सामने कुछ नहीं, इसके अतिरिक्त और कुछ चाहिए क्या। बोला ऐसा कैसे, इसमें क्या अच्छा लगता है। तो कहते हैं वक्त्रम कुंतलाय, कुंतले मतलब ये जो घुंघराले घुंघराले बाल है जो आपके मुख पर आ रहे हैं, वक्त्रम कुंतलाय सिंह, और वो बहुत ही चमक रहे हैं, मतलब इतनी शाइन कर रहे हैं, रक्तेश्य गोपिया, और गोपियों के होंठों पे जो लाली लगी हुई है वो लाली अब उन होंठों से उतर गई। बोला वो कहाँ गई, तो कहते हैं मुंह चुंबितम बिंब रक्त गरम, कैसे उनके होंठों पे रह सकती है, मुंह चुंबितम, वो गोपियां दिन में 100-100 बार आकर तो तुमको चूमती है और तुम आए उनके होंठों की लाली अब कहाँ पर है, तुम्हारे गालों पर है, मुंह चुंबितम बिंब, आपके गाल उस गोपियों की लाली से लाल हो गए हैं, और रक्त धर्म दे, और उन्होंने केवल तुम्हारे चीख को ही नहीं, तुम्हारे अधरों को नहीं छोड़ा, रक्त तुम्हारे अधर भी लाल लाल है, तुम्हारा जो चीख है वो भी इतने लाल लाल है, इतने सुंदर सुंदर तुम्हारे करली बाल है। इसलिए मैं कहता मनस्या विरसम, इस स्वरूप में मेरे मन में आकर आवृत हो जाओ, बस ये स्वरूप मेरे मन में बैठ जाए, और मनस्या विरसम अलम लक्ष्य लाभ है, और लाखों लाभ, लक्ष्य मतलब और बड़ी इसकी बदली में मुझे लाखों करोड़ों की संपत्ति दे दो, कितने भी लाभ दे दो, मुझे वो नहीं चाहिए। तो बोला आखिर तुम मेरे इस स्वरूप को प्राप्त करके क्या चाहते हो, मतलब मेरे से क्या चाहते हो तुम। तो कहते हैं नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभु दुख जलाभिमतम कृपा दिवि विश्याति दीनं पतानो गृहाणि क्षमाम च मे यशि विश्रा। बोले कृपा कृपा की दृष्टि चाहता हूँ। बोला मुझे से क्यों, बोला नमो देव दामोदर, आप देव हो, समस्त देवों के देव हो, और आज इस स्वरूप में उखल से बंधे हुए, वैसे तो हाथ में आने वाले नहीं हो, ये भगवान टेढ़े है ना तेरे को। बोले कृष्ण टेढ़ा क्यों है, टेढ़ा इसलिए है कि टेढ़ी जो वस्तु होती है ना वो हाथ में नहीं आती जल्दी, और जब एक बार हृदय के अंदर आता नहीं है और जब एक बार आ जाए तो टेढ़ा है तो वापस निकलता नहीं है। तो इसलिए कहते हैं नमो देव दामोदर, आज तुम दामोदर बने हुए हो, आज तो तुम्हें बांधा हुआ है तो तुम्हें एक जगह पे खड़े हो। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ अनंत विष्णु, देखने में तो तुम छोटे से लगते हो, तुम्हें रस्सी से बांध दिया, लेकिन अनंत विष्णु समस्त जीवों के जो पालनहार विष्णु है वो है वास्तव में। आप छोटे से बालक नहीं है, इसलिए आपके पास आया हूँ तो आप क्यों पूछ रहे हो कि क्यों आया हूँ, एक ही बात के लिए आया हूँ, प्रसीद प्रभु दुख जलाभि मग्नम। हे प्रभु प्रसीद, प्रसिद्ध मतलब मुझ पर कृपा कीजिए, प्रसन्न हो जाइए। बोला तुम पर प्रसन्न क्यों हो जा, बोला जलाभि मग्नम, ये जो संसार का जो संसार सागर है वो दुखों से भरा हुआ है, हर तरफ जो है वो दुखों की अग्नि है। सुबह सुबह गाते हैं ना, संसार रावा नरनी दलो का प्राणाय प्रसिद्ध प्रभु दुख जलाभि मग्नम, इन दुखों से बोला मुझे मुझे मुक्त कर दो, इन दुखों को खत्म कर दो। और क्या करो, कृपा दृष्टि वृष्टि दीनम बतान, बस एक नजर कृपा की कर दो सांवरिया गिरधारी, एक नजर दृश्या। बोला अच्छा कौन सी कृपा चाहिए आप बताओ, अब उसका लालच बढ़ गया। पहले तो बोला था क्या चाहिए, कि आपका ये सुंदर सा स्वरूप हमेशा सदा में मनस्या मेरे मन में बना रहे, और अब बोल रहे हैं कि क्या चाहिए, गृहा दृश्यक्षी दृश्या, बस तुम ऐसे ही मेरी अक्षी दृश्या मतलब मेरी आंखों के सामने हमेशा रहो। पहले बोला मन में रहो, चलो मन में तो ऐसा है कि भगवान किधर भी होंगे तो मन में आंखें बंद करेंगे तो दिखेगा, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, ऐसे ही मेरे सामने रहो। बोला ऐसे कैसे, सारा सारी जिंदगी बस तुम्हारे सामने बंधा रहा हूँ, ऐसे ही बंधा बंधा मुझे देखना है क्या तुमको। अच्छा ऐसी कृपा कभी किसी के ऊपर होती है क्या कभी, मैं क्यों तुम्हारे ऊपर कृपा करूं। तो बोला आप तो देखो पतितों के ऊपर भी कृपा कर दो, जितने बड़े बड़े पापी हैं उनके ऊपर भी कृपा कर दो। बोला ऐसा कौन है जिसके ऊपर मैंने कृपा की है, किसी के बारे में बताओ। तब क्या कहते हैं, वो तो बदमाश थे, वो तो कितना गलत कार्य कर रहे थे, मैं तो फिर भी दीन हूँ, मैं तो पतित हूँ, आप उनके ऊपर कृपा कर सकते हो तो मेरे ऊपर भी कर सकते। हुए आत्मा जो बद्धे मूर्तव त्वया मुचित भक्ति भाजो कृतव च। उन्होंने तो आपकी भक्ति भी नहीं की, फिर भी आपने उनको मुक्त कर दिया। तो आप दया मुचित हो, फिर वो तथा प्रेमा भक्ति सकाम प्रयास। बस मुझे तो आपकी भक्ति ही चाहिए, आपका प्रेम, आपकी भक्ति, सकाम मेरी एक ही इच्छा है। और नमो शीघ्र हो मैं श्री दामोदर, और मुझे मुक्ति नहीं चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वही प्रेम और भक्ति चाहिए। तब वो कहते हैं कि मैंने थोड़ी ना उनकी मुक्ति की, कृष्ण बोले मैंने थोड़ी ना कुबेर के बच्चों को मुक्त किया था। वो तो क्या हुआ, मैं मुझे तो मेरी मम्मी ने रस्सी से बांधा, मैं तो आगे निकल गया था। उनको तो वो जो रस्सी बांधी हुई है ना उसके कारण, अगर रस्सी नहीं बांधी हुई होती तो फिर तो मैं आगे निकल जाता, मैं तो हमेशा आगे निकल जाता हूँ इतनी दफा। तो ये अभी क्या हुआ था, वो दोनों वृक्ष जो थे वो ऐसे खड़े थे, बीच में से कृष्ण बहुत दफा, कृष्ण जब घुटनों के बल जाते थे पूरा आंगन ऐसे करते थे, कभी तो मुक्ति नहीं हुई उनकी, आज रस्सी बांधी तो उसकी मुक्ति हुई। बोले ये रस्सी की वजह से मुक्त हुए, मेरी वजह से थोड़ी ना मुक्त हुए। तब ये कहते हैं नमस्ते सुदामे सुरदेते दामे। चलो ठीक है, फिर तुमको प्रणाम नहीं करता हूँ, नमस्ते सुदामे। अब मैं इस रस्सी को प्रणाम करता हूँ, ये रस्सी कृपा करके जैसे तुमने उनको मुक्त किया था मुझे भी मुक्त। बोले नहीं नहीं, रस्सी की वजह से भी नहीं, ये तो इसलिए क्योंकि ये मेरे पेट पर बंधी हुई थी। अगर मैं पेट पे नहीं बंधी होती रस्सी की, तो कितनी दफा जगह पे पड़ी हुई होती है, वो तो किसी को मुक्त नहीं करती है। तब वो कहते हैं त्वरी योदराय स विश्व दाम ने, त्वरी योदराय स उधर कहते हैं तो भी ठीक है, रस्सी के साथ तुम्हारे पेट को भी प्रणाम करता हूँ, कृपया मेरे ऊपर भी कृपा करो। तब वो कृष्ण बोलते नहीं, रस्सी और पेट की वजह से थोड़ी ना वो मुक्त हुए हैं, वो तो एक शुद्ध भक्त की कृपा है। याद रखिए, जब किसी शुद्ध भक्त की कृपा होती है ना तभी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जब तक शुद्ध भक्त आपके जीवन में नहीं आएगा, जब तक भक्त का संग नहीं आएगा, जब तक किसी भक्त की कृपा प्राप्त नहीं होगी, तब तक भूल जाइए कि भगवान की कृपा होगी। भगवान बोलते हैं मैं मिलता हूँ, मैं अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के अधीन होता हूँ, मैं भक्त का धन हूँ। जैसे हमारा जो धन होता है वो मैं किसी को भी दे सकती हूँ ना, तो भगवान कृष्ण भक्तों का धन है, वो जिसको चाहे लुटा दे कृष्ण को। बोला वो तो नारद मुनि ने उनको श्राप दिया था, और श्राप जब भक्त किसी को श्राप भी देते हैं ना तो उस श्राप के अंदर भी उसका कल्याण होता है। श्राप में क्या दिया कि तुम वृक्ष बन जाओ, और वृक्ष कहाँ पे बनो, कृष्ण नंदराज के आंगन में, और कभी द्वापुर में। बहुत ही युग पहले उनको श्राप मिला था, वो इतनी युगों से वो वहीं पर दो वृक्ष खड़े हुए थे और कब से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बोला था जब कृष्ण आएंगे ना द्वापर युग में तब तुम्हारा उद्धार करेंगे, और वो तब से वो खड़े थे, कब आएंगे कृष्ण, कब हमारा उद्धार करेंगे। तो भगवान ने सोचा कि अब बहुत समय हो गया है, उनकी प्रतीक्षा, उनकी तपस्या जो है वो बहुत तीव्र हो गई, इसलिए उनको मुक्त करना चाहिए। इसलिए देखो ना जाने, ये तो इतने बड़े पापी थे, कुबेर जो था वो खजांची है, जो देवता है उनका कैशियर है, तो उनके पास कितना सारा धन होगा, और ये तो रईस बात की औलाद तो बिगड़ने वाली है, ये तो जान रखिए। वहाँ कुंती महारानी कहती है जन ऐश्वर्य श्रुति शिवी, जिसके पास अच्छे घर में जन्म, मतलब धनवान घर जन्म होगा उसको यश मिलेगा, ऐश्वर्य उन्हें बिगड़ेगा बच्चा। वो तो जो अंचित द्वाम अकिंचन गोत्र, जो अकिंचन होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो दीन होते हैं ना, उनके बच्चे अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर कुबेर जो था देवताओं का खजांची था, अप्सराओं के बीच में रहता था, ना जाने क्या क्या करते, अभी उनको तो कभी जिंदगी में मुक्ति मिलती नहीं, लेकिन एक बार टक्कर हो गई नारद मुनि की और बोला जब कृष्ण आएंगे द्वापर में तुम्हें मुक्त कर देंगे। तो बोला ये तो उनकी मुक्ति मेरी वजह से नहीं हुई, नारद मुनि की वजह से हुई है, नारद मुनि जैसे किसी शुद्ध भक्त को ढूंढो। बोला अब तो मैं एक ऐसी तरकीब लेके आया हूँ कि वहां से तुम नहीं बच सकते। फिर क्या बोलते हैं नमो राधिकायै पतिया प्रियायै नमो नंदलीला। देने वाला हूँ, जिसने अगर मेरी सिफारिश कर दी तो तुम नहीं छोड़ सकते, फिर तो तुम्हें मुझे मुक्त करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं किसकी शरण में जाता हूँ? छोड़ो रस्सी को, छोड़ो तुम्हारे पेट को, तुम्हें प्रणाम नहीं करता। अब मैं किसको प्रणाम करूंगा? नमो राधिका दिया प्रिया, जब मैं राधा रानी की शरण में जाऊंगा तब मुझे पता है चाहे मैं कितना बड़ा पापी होऊंगा ना, फिर भी वो मुझे, वो एक माँ होती है ना, देखो जो पिताजी होते हैं ना वो अपराध को देखते हैं, कभी कोई बच्चे से अपराध हो जाता है तो पिताजी अपराध देखते हैं, लेकिन अगर वो माँ के पास आता है ना फिर माँ क्या बोलती है? वो बाप बहुत गुस्से में होगा, फिर माँ क्या बोलती है? हमारे सिंधी में बोलते छठ न कर दो, छठी सामने खड़ा चलिए, अभी तो हाथ में उठाओ, बेर न कर दो, दोबारा नहीं, अभी इस बारी माफ कर दो उसको। तो माँ जो है ना बार बार साइड लेती है बच्चों की, तो इसलिए श्रीमती राधा रानी जो है ना, जब हम इसे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करते ना, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, ये नाम शुरू कहाँ से होता है? हरे, और हरे किसका नाम है? श्रीमती राधा रानी का नाम है। ए श्रीमती राधा रानी, ए श्रीमती राधा रानी मुझ पर कृपा करो, ए कृष्ण की प्यारी मुझ पर कृपा करो, आप अपने कृष्ण की शरण में मुझे लो, मुझे ऐसा योग्य बना कि मैं आपकी, मतलब वो डायरेक्ट मैं मुंह लेकर कृष्ण के पास जाऊंगा तो दो 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 चार पड़ेगी, तो तुमको इसलिए भेजा था संसार में, इसलिए पहले कहाँ पर जाना है? श्रीमती राधा रानी। तो इस तरह से यही भाव से एक भक्त जो है वो हमेशा एक भक्त के अंडर में लेकर, एक शुद्ध वैष्णव के अंडर में लेकर भगवान की सेवा करता है, जिस तरह से भक्तों ने हमें आदेश दिया है, इसलिए हमारा कर्तव्य है जो जो आदेश हमें श्री प्रभुपाद जी ने दिए हैं उन्हीं आदेशों का पालन करना है, नवदा भक्ति में श्रवण करना है, कीर्तन करना है, और ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना है, अच्छे से अच्छा सिंसियर इतना बनना है। ये जिस तरह से यशोदा ने आज सोच लिया था कि मैं कृष्ण को बांध के रहूंगी, मैं कृष्ण को प्राप्त करके रहूंगी, इसलिए ये निश्चय कर लेना है कि ये जन्म जो मुझे भगवान ने दिया है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव जन्म तिहारे लेके आए, जन्म तिहारे लेके। एक बात मैं आपको बताऊं, वहीं से हम इस कथा को विराम देंगे, कि इससे पहले भी हमारे करोड़ों जन्म हो चुके हैं, क्यों, जब से भगवान है तब से जीव है, और बहुत सारे जन्मों को हमने संसार को दिया है, बहुत सारे जन्मों में हमारे बच्चे भी हुए हैं, हमारे माता पिता भी हुए हैं, प्रेमिकाएं भी हुए हैं, बहुत सारे जन्मों में, यहाँ तक भागवतम में लिखा है समुद्र के तट पर रेत के उतने कण भी नहीं है जितने के आपके सगे संबंधी हो चुके हैं। समुद्र के तट पर आपने देखा होगा ना कितने रेत के कण होते हैं, कभी पांव गीला हो तो पूरा पांव जो है ना कितने की उसके अंदर, और उस तट पे रेत के उतने कण नहीं है जितने के आपके पिछले जन्मों में सगे संबंधी, पति पत्नी बच्चे संतान इतने हो चुके हैं। तो किस किस को याद करेंगे, किस किस को प्रेम करेंगे? इसलिए जब सारे जीवन दूसरों को दे दिए उसके बाद भी जन्म मरण का चक्कर नहीं खत्म हुआ, तो एक गेम खेलकर देख लीजिए, ये छोटा सा जीवन है वो कृष्ण को दे दीजिए। और इस कृष्ण इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण भक्त बरो चतुर, चतुर मतलब एक छोटी सी लाइफ देकर वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो ये जीवन कृष्ण के लिए और करना कुछ नहीं है, भगवान की कथाओं को श्रवण करना है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, भगवान से प्रेम करना है, भगवान को भोजन खिलाना है, और दामोदर महीने में भगवान को दीपदान करना है। तो आप सब तैयार हो जाए, अब हम दीपदान करेंगे। और एक बात, जिनके पास दामोदर की फोटो नहीं है, आप सबको सुबह शाम जो है वो दामोदर को दीपदान करना है, जिनके पास दीप नहीं है या फोटो नहीं है तो वो हमसे ले सकते हैं, लेकिन आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जरूर अपने घर में और जहां तक आपकी आवाज पहुंच सकती है। देखो हमको ऐसा है कि अपना सब अपना कल्याण करना है, उनके साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करना है, तो जहाँ तक आप लोगों के शब्द पहुँच सकते हैं, आप दूसरों को भी बताइए कि कितना महीना पवित्र है, केवल दीप दान करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर जिनको दामोदर की फोटो चाहिए वो हमसे ले सकते हैं, जिनको दिए चाहिए वो भी हमसे ले सकते हैं, लेकिन आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि एक दिन भी मिस नहीं कीजिएगा, सुबह को और शाम को सब लोग दामोदर को दीप दान दीजिएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कलि राधा हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, पावन कार्तिक मास श्री राम दामोदर भगवान की जय, दामोदर अष्टकम की जय, गौरा प्रमाते दामोदर की फोटो जिनके पास नहीं है।